તારીખ 3/1/1997 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા બાંધણીમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 31.
ન તો વો હૈ ન પરિવાર મેં અકેલી હું કોઈ પ્રકાર કા પરિવર્તી न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, फिर भी यह जीव आत्मकल्याण में क्यों रुका हुआ, यह प्रयत्न 1 साल से चल रहा है। सत्संग में निरंतर जा रहे हैं, चिंता भी दुख भी बहुत लगता है, पर किस कारणों से ऐसा है, दोषों का अवलोकन से पता चलता है फिर भी हो जाता है, इसका खेद रहता है, फिर भी कभी कभी अवलोकन छूट जाता है, क्या कारण है, विस्तार से कृपा करें समझा भाई। ये जो अवलोकन छूट जाता है जागृति नहीं है, और जागृति इसलिए नहीं है कि उदय में रस आ जाता है, उदय में रस आ जाता है इसलिए जागृति छूट जाती है और अवलोकन भी छूट जाता है। तो आत्मकल्याण की भावना प्रबल हो गए तो ऐसा नहीं होगा, आत्मकल्याण में रुका हुआ है तो कहीं और जगह परिणाम तो काम करता है। जगत में दो ही पदार्थ है, एक अपना आत्मा और एक पर में संख्या कितनी भी हो लगा रहता है, और पर का आकर्षण है, पर की आसक्ति है, पर की मुख्यता है, पर से लाभ नुकसान माना है, ये सब प्रकार होने से पर के प्रति परिणाम लगा रहता है, और पर रस के कारण से परिणति भी पर तरफ की बन चुकी है। ये स्थिति संसारी जीव की अनादि से है। अब उस स्थिति में जितना वजन पर की ओर गया इससे ज्यादा वजन स्व की ओर जाएगा, तब तो ये पर वाले परिणाम का पलड़ा पर आएगा उठेगा, क्योंकि परिणाम तो दोनों बाजू का जो है वो तराजू के पल्ले के बराबर है। तराजू के पल्ले में जिस पल्ले में वजन ज्यादा है वो नीचे बैठेगा, सामने वाला ऊपर आएगा। वजन एक और जाता है सीधा ही नहीं सकता, या तो पर की ओर जाए या तो स्व की ओर जाए। हमारा वजन पर के बहुत है तो परिणाम उधर जाएगा, स्व की ओर तो उधर आएगा, तो तराजू का पल्ला जैसी बात है। इसलिए अवलोकन से हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा रस हमारा वजन कहाँ है और क्यों है, इसके पीछे हमारा कौन सा अभिप्राय काम कर रहा है, उतनी गहराई में अवलोकन जाना चाहिए। सिर्फ परिणामों का अवलोकन होना उतनी सी बात नहीं हो करके उस परिणामों के भीतर इसके पीछे कौन सा हमारा अभिप्राय कार्य कर रहा है वो भी देखना जरूरी है। तभी अभिप्राय बदलेगा परिणाम की योग्यता सहज बदलेगी। जब तक अभिप्राय नहीं बदलेगा, परिणाम सुधारना चाहेंगे तो भी सुधरेगा नहीं, क्योंकि तो परिणाम उल्टा पड़ा है, अभिप्राय उल्टा पड़ा है। जैसे कि सुख बुद्धि है पर में सुख बुद्धि होने पर भी हम चाहते हैं कि पर में हमारी आसक्ति न हो, लेकिन हो ही जाएगी, ये बिना रहेगी नहीं। इसलिए काम तो सावधानी से करना है।
ये अवलोकन की बात करी भाईश्री, एक सामान्य अवलोकन के जो भावभाषण तथा इसे पहला अवलोकन,
अवलोकन का स्टेज पूर्णता के लक्ष्य के बाद का होता है, इसके पहले यथार्थ अवलोकन नहीं चलता। अनुकूलता में प्रतिकूलता किस तरह समझकर आत्मकल्याण की ओर जावे, कारण वैराग्य भाव तथा अपनत्व छुटाने बहुत प्रयत्न करते हैं। अनुकूलता में रस आने से हमें जो आत्मरस से विरुद्धता होती है, यही प्रतिकूलता है। सारे जगत के प्राणियों को अनुकूलता में रस आता है, एक मुमुक्षु जीव यानी विचारवान जीव ऐसा होता है कि अनुकूलता में उसको अकुलाहट होती है कि मेरा रस इसमें जाने से मेरी आत्मा जो है वो मेरे स्वरूप से, मेरे परिणाम दूर चले जाए। इसलिए अनुकूलता में रस लेना ये जहर पीना बराबर है। विचारवान जीव को इस तरह से अनुकूलता में प्रतिकूलता दिखती है तो आत्मकल्याण की ओर जाता है, वरना अनुकूलता में जगत के जीव फंसते हैं। ये मीठी छुरी है, क्या है? मीठी छुरी। जीभ काटती है और मीठापन लगता है, लेकिन जीभ काटती है। इस तरह से अनुकूलता को सही नजर से देखे तो आत्मकल्याण की ओर जाए। और वैराग्य भाव नहीं आता है, इसका कारण वो है कि परिभ्रमण की वेदना आए बिना वैराग्य का प्रारंभ नहीं होता, वैराग्य की शुरुआत नहीं होती। और वैराग्य से विरुद्ध जो आसक्ति के परिणाम है वो केवल कल्पना के सिवा कुछ नहीं है।
बराबर,
जिस चीज में आसक्ति होती है उसमें अच्छापन की एक कल्पना जीव ने बना रखी है, कोई दम नहीं है इसमें। वस्तु का स्वरूप से देखे किसी भी पदार्थ में तो पुद्गल पुद्गल है, परमाणु परमाणु है। अच्छापन तो हमारी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। तो वस्तु के स्वरूप अनुसार ज्ञान होवे या समझ होए तो भी आसक्ति छूट जाएगी, तो वैराग्य आ जाए। इस तरह से भी वैराग्य आ सकता है। इसके सिवा ये नहीं होना नहीं होना ऐसा प्रयत्न तो कोई काम में आने वाला सहज विरक्ति रहे ऐसी परिस्थिति हमें बनानी चाहिए। सहज विरक्ति ये तो वस्तु के स्वरूप ज्ञान अनुसार होगा और परिभ्रमण दिखेगा आसक्ति के परिणाम में तो विरक्ति आएगी। विरक्ति आने से रसमंदता होने से दर्शन वो भी कमजोर होता है, ज्ञान में भी निर्मलता आती है और आत्म कार्य में सुगमता रहती है।
परिषद दर्शन परिषद विषय के विस्तार करिए आपसे 500
उद्यान परिषद और दर्शन परिषद शब्द दो है, परिषद का प्रकार तो एक ही है। अज्ञान से अज्ञान मिटाना चाहे तो भी अज्ञान मिटता नहीं, बौद्धिक स्तर पे हमें ऐसा लगे कि हमें हमारा अज्ञान है वो मिट जाए तो अच्छा है, हमारा मिथ्यात्व वो मिट जाए तो ठीक है। मिटाना चाहते हैं फिर भी नहीं मिटता है, इसका दुख इसका खेद, उसको कहते हैं अज्ञान परिषद और दर्शन परिषद। ये दर्शन लिया मोह के स्थान में,
दर्शन तो सामान्य दर्शन नहीं, मोह लगा
ना दर्शन सामान्य दर्शन।
अज्ञान परिषद कहो अदर्शन परिषद केम ना कहो, एक ने अलग पेरा ने कहीं जुदू से कशु से कहो दर्शन नो परिषद
तो स्वरूप दर्शन नहीं होता है, आत्मदर्शन नहीं होता है, अपने परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, वो भी एक परिचय, उसका खेद हो गए तो वो भी एक परिचय है, ऐसे भी ले सकते हैं। और मिथ्या दर्शन का अभाव नहीं हो रहा है, ऐसा मिथ्या दर्शन चालू है इसका खेद, वो भी दर्शन परीक्षा है।
प्रश्न है ज्ञान अगर अमुख्य ज्ञान कहो तो दर्शन अगर अकेम नहीं मुख्य
ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या शब्द है वो अध्यार है,
जब अदर्शन कहे के तो खोटू नहीं है अध्यार है क्या
तो वहाँ मिथ्या दर्शन लेना है, मिथ्या दर्शन का परीक्षा वो अध्यार शब्द है, इसलिए प्रारंभ में दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों एक साथ होता है। अज्ञान होता है वहाँ मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या दर्शन होता है वहाँ अज्ञान होता है।
ये परिभाषा तो प्रत्याख्यान है अनप्रत्याख्यान है, एम बे जड़ एक बीजा विरुद्ध छे लगे, प्रत्याख्यान वर्णीय अप्रत्याख्यान वर्णीय, पण ये तो સાધુ ને વ્રત ને શ્રાવક ના વ્રત નું એવું છે
દર્શન પરિષદ ભાઈશ્રી એ મુમુક્ષ ને કે જે પરિષદ મુનિઓ ને કહેવામાં આવે છે તે રીતે લેવાનું છે, આપણામાં જ ખટાવવાના છે ને
મુમુક્ષ કે ભૂમિકા કારણ ખેદ હૈ. અપને સ્વરૂપ જાનને મેં કૌન સી બાધા પડતી હૈ? જૈસે દર્શન હો મુખ્ય હૈ, યહ દર્શન હો કિન કિન કારણો સે હોતા હૈ, મુખ્ય કૌન સે હૈ? તો અપને સ્વરૂપ જાનને મેં દર્શન વો મુખ્ય હૈ, અજ્ઞાન મુખ્ય હૈ. દર્શન ઓર અજ્ઞાન મુખ્ય હૈ, ઓર દર્શન ઓર અજ્ઞાન સે હોને વાલે જો ભી અન્ય પરિણામ હૈ ઉસકે પેટે મેં આતા હૈ, બહુત પ્રકાર કે વો ભી સબ બાધા ડાલતે હૈ, ઉસસે ભી બાધા હોતી હૈ. જૈસે કર્તા બુદ્ધિ હૈ, ભોક્તા બુદ્ધિ હૈ, આધાર બુદ્ધિ હૈ, સુખ બુદ્ધિ હૈ, એસે હમને આત્મ જાગૃતિ મેં કરીબ 26 પ્રકાર કે પરિણામ લખે હૈ. દૂસરે અંક પ્રશ્નોત્તર મેં આયા
દર્શન મોના
હા
મંગલ પર
દર્શન વો હૈ વો શ્રદ્ધા કી વિપરીતતા હૈ, ઓર અજ્ઞાન હૈ વો જ્ઞાન કી વિપરીતતા હૈ. હોતે હૈ સાથ મેં, इसलिए कभी बात ज्ञान से आती है, कभी बात श्रद्धा से आती है. परिणाम है ये અનેક પ્રકાર, અનેક પ્રકારના થઈ જાય છે. પરિણામ મેં અનેક પ્રકાર છે, પરિણતિ એક ધારી રહી છે. એટલે અનેક પ્રકારના પરિણામથી રિઝલ્ટેડ પોઝિશન ઊભી થાય છે, એને પરિણતિ કહે છે. જેમ કે અત્યારે અબ હમારી સંસાર પરિણતિ હો ગઈ હૈ, ઓર હમ પરિણામ કરતે હૈ આત્મા કે સ્વરૂપ કે વિષય મેં, ફિર ભી હમે આત્મા કા અનુભવ નહીં હો રહા હૈ. પરિણામ મેં હમ એસા વિચાર કરતે હૈ, વિકલ્પ કરતે હૈ કે મેં આત્મા હું, શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન હું, પરિપૂર્ણ નિર્મળ આનંદ સે ભરા હુઆ હું. ફિર ભી સંસાર પરિણતિ જબ તક તૂટતી નહીં હૈ, તો એ વિચાર વિકલ્પ કામયાબ નહીં હોતે, સફલ નહીં હોતે. અનાત્મ પદાર્થ મેં આત્મબુદ્ધિ, ये आत्मा का दर्शन नहीं करने देते. रागादि भावों में कर्ता बुद्धि, कषाय की मंदता में सुख बुद्धि, और जगत के सभी पदार्थ नेय मात्र है, इसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि. સ્વરૂપ કા ક્યો સ્વરૂપ કો ક્યો જાનને મેં રુકાવટ આતી હૈ? ક્યો નહીં જાન સકતે સ્વરૂપ કો? અપને સ્વરૂપ કો હમ ક્યો નહીં જાન સકતે? કે જો જ્ઞેય પદાર્થ હૈ, સભી જગત કે પદાર્થ જ્ઞેય હૈ, એક હી વર્ગ હૈ ઇસકા, હમ ઉસકા દો વર્ગ, દો ક્લાસ કર દેતે હૈ, ઇષ્ટ ઓર અનિષ્ટ. યે ઠીક હૈ યે અનિષ્ટ હૈ? એસા હમારા ગલત અભિપ્રાય. ये स्वरूप को जानने में बाधा डालता है। दुख में सुख की प्रतीति कैसे कि हमको खीर खाने में मजा आई, खीर खाते हुए दुख था या सुख था?
दुख
था तो दुख, लेकिन विश्वास है सुख का, ये खीर खाएंगे अच्छा रहेगा। दुख में सुख की प्रतीति, प्रतीति मैंने विश्वास है, उल्टा निश्चय के कारण मिसकॉन्सेप्ट। पर सत्ता वाले द्रव्य भाव में एकत्व बुद्धि अपनत्व, पर की मुख्यता, पर की मुख्यता विभाव की रुचि, कुदेवादिक में श्रद्धा कृतकारित अनुमोदना से, ये भी आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं करने देंगे। वीतराग देव गुरु शास्त्र का निषेध या विरोध कृतकारित अनुमोदना से, ये भी आत्मस्वरूप को जानने में बाधा डालता है। लोक संज्ञा समाज प्रतिबंध, समाज की मुख्यता से आत्मकल्याण को गौण करना, ये ओग संज्ञा मैंने समझी हुई बात को का अमलीकरण नहीं करना, वो भी स्वरूप जानने नहीं देगा। कुसंग की रुचि, जिसके संग नहीं करना चाहिए ऐसे अवगुणी जनों का संग करना, अच्छा लगना, ये भी बाधक है आत्मदर्शन।
वैसे ओक संग जरा बीजी बार समझाओ, सुनते ओक संग रूटीन जो माने से ते ओक संग
ते भी वो स्थूल ओक संग ना।
हाँ,
जो लोग
होगे होगे
बिना समझे धर्म क्रिया करते हैं वो ओक संग ना से करते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं कि हम तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करके सब बात समझ करके करते हैं
जी।
हमारी योग संज्ञा है कि नहीं है
जी।
कि जहां तक हम प्रयोग में नहीं ले जाए वहां तक वो योग संज्ञा है।
बराबर,
इस बात को प्रयोग में नहीं ले जाए वहां तक योग संज्ञा है, वो भले समझी हुई बात है तो भी योग संज्ञा है। प्रयोग करता है उसको ओक संज्ञा नहीं रहती,
प्रयोग में सक्सेस नहीं हुआ है,
प्रयोग में वो बात समझ में आती है। प्रयोग करने वाला प्रयोग में सक्सेस हो जाएगा, जिस जिस प्रकार के प्रयोग करता रहेगा उससे उसकी ओक संज्ञा मिटती जाएगी, भाव वासन आता जाएगा। जैसे हमें साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाने में समझ क्या है कि न तो इधर झुकना है न उधर झुकना है, न बाएं झुकना है न दाहिने झुकना है। हाँ, समझ तो बराबर है, लेकिन साइकिल पर बैठ करके जब प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे नहीं झुकना, वो बात तो तभी समझ में आती है। फिर सक्सेस तो प्रैक्टिस के दौरान हो जाएगा, लेकिन समझ में तब आती है कि कैसे नहीं झुकना, वो बात तभी समझ में आती है। ऐसे क्योंकि हमारा जो ये ज्ञान है वो वास्तव में प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिस से ओक संज्ञा मिटती है। अगर हम समझते हैं फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते तो ओक संज्ञा में पड़े हैं, चाहे कितना भी समझते। विद्यमान सत्पुरुष की विमुखता करना, उपेक्षा करना, अवर्णवाद करना ये भी आत्मा को जानने में रुकावट लाता है। अपसिद्धांत का निरूपण करना, सिद्धांत विरुद्ध प्रतिपादन करना बहुत बड़ा अपराध है। ज्ञान के उघाड़ में क्षयोक्षम की रुचि होना वो भी स्वरूप में बाधक है, क्योंकि बाह्य ज्ञान की रुचि हो गई। मिथ्या आग्रह रखना बाह्य क्रिया आदि का, पूर्वग्रह रखना ये भी स्वरूप में बाधक है। अहित के परिणामों में हित बुद्धि होना ये भी प्रयास है। हित रूप प्रयोजन के प्रति दुर्लक्ष होना, सावधानी नहीं होना ये भी स्वरूप जानने में बाधक है। और सरलता मैंने वक्रता हठाग्रह को भी नुकसान करता है, अपने स्वरूप को जानने नहीं देता। दोष के परिणामों का पक्षपात करना ये दोष दृष्टि के कारण से होता है, इसमें भी गुण दृष्टि का अभाव हो जाएगा। दूसरा जीव गुणवान होते हुए भी मात्सर्य होना, ईर्ष्या होना ये भी स्वरूप जानने में बाधक है। पर्याय में एकत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि, वो पर्याय बुद्धि में क्या होता है कि पर्याय बुद्धि के कारण से ज्ञान चारित्र वीर्य आदि का क्षोभसम भाव होता है, उस पर वजन जाता है, उसकी अधिकता रहती है, उसकी मुख्यता हो जाती है, वो भी आत्मस्वरूप को जानने में बाधक है। उदय भावों में चिकास होना, रस वाले परिणाम होना ये भी आत्मा को जानने नहीं देगा। भेद प्रधानता यानी भेद की रुचि, भेद प्रभेद सीखने का मन रहना, ज्ञान कितने प्रकार के, फलाना कितना प्रकार का, प्रमाद कितने प्रकार के, वो कितना प्रकार, जीवों का भेद कितना, 14 गुण स्थान का भेद, 14 मार्गणा स्थान का भेद, 14 जीवस्थान का भेद, भेद प्रभेद जानने की रुचि या प्रधानता रहना, वो अभेद का अनुभव करना कराने में बाधक होता है। अध्यात्म का व्यामोह बहुत सी बातें लिया है, सही अध्यात्म होवे तो बात अलग होती है, वरना शुष्कता हो आ जाती है। ये अध्यात्म का व्यामोह है। अध्यात्म का व्यामोह से क्या होता है, ये अध्यात्म का व्यामोह करने वाला शुष्क ज्ञानी होता है, स्वच्छंद उसका पनपता है और परिणमन नहीं होते हुए भी बकवास बहुत करता है। कैसे, ये देवगुरु शास्त्र पर द्रव है क्या? इतना तो कोई ठिकाना नहीं, और देवगुरु शास्त्र पर द्रव है ऐसा है, मोक्ष की पर्याय भी है,
भक्ति है,
भक्ति है फलाना है, ये सब अध्यात्म का व्यामोह में से उत्पन्न होता है। इसमें इसको कहते हैं मिथ्या प्रलाप। मिथ्या प्रलाप है वो साहित्य की भाषा है, लोक भाषा में उसको बकवास कहते हैं। बकता है जैसा कैसे भी बकने लग जाता है, अध्यात्म का व्यामोह होता है तब ऐसा होता है, स्वच्छंद बढ़ जाता है। मताग्रह, संप्रदाय का आग्रह, विपरीत अभिनिवेश पूर्वक तत्व का स्वीकार करना, नव तत्व को मानता है लेकिन विपरीत अभिनिवेश पूर्वक, अभिप्राय उल्टा है। कल्पित अधिष्ठान, अधिष्ठान मैंने आधार, ध्रुव तत्व का आश्रय तो मिले नहीं अंतर में, और कोई विकल्प का आधार लेकर के चले वो कल्पित अधिष्ठान है, अधिष्ठान मैंने आधार के योग्य वस्तु, कल्पित ध्येय, ध्येय की कल्पना करें, ध्येय की कल्पना करें, ध्येय का पिक्चर नहीं हो गया, कल्पना कर ले, उसको कहते हैं कल्पित ध्येय, या ध्यान का विषय कल्पित कर ले, उसको भी कल्पित ध्येय कहते हैं। स्वरूप तो ज्ञान में आए नहीं, स्वस्वरूप जो ज्ञान में आए वही ध्यान का विषय है, तो ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है, ज्ञान का ठिकाना नहीं हो ध्यान, हमारा ध्येय वैसा है वैसा है, बेमा है, पूर्णता का लक्ष्य भी यथार्थ नहीं हुए तो भी कल्पित ध्येय का पक्ष, शुभभाव का पक्ष, कल्पित साधन का स्वीकार, यथार्थ साधन नहीं हो गया अंतर, अन्यथा कल्पित साधन का स्वीकार, वो भी स्वरूप जानने में बाधक है। स्वभाव की अरुचि और सद्धर्म की अरुचि दोनों आ जाता है उसमें। कुतूहल वृत्ति बाह्य पदार्थ में, कुतूहल वृत्ति ये पर रुचि में जाता है, ये भी स्वरूप के प्रति जाने नहीं देगा ज्ञान को। ये सब प्रकार के जो परिणाम है, करीब 26 परिणाम दिए हैं,
34
ये 34 परिणाम जो है वो जीव को स्वरूप जानने में बाधा डालता है, जानने नहीं देता है, विरुद्ध दे जाता है। आत्म जागृति मार्ग डायरी में से लिया है, लिखते हैं तो वो उपयोग चल जाता है, फिर याद नहीं रहता, बोले कि कितने 34 है तो ऐसे याद नहीं रहता, तुम जब चला तब लिख दिया। ये तो सब पहचान है, ये सब भावों की पहचान होनी चाहिए, पहचान नहीं होगा तो नाम निक्षेप करोगे, सब नाम जानने की बात होगी, भावों की पहचान होगी, तो परिणाम पकड़ लेंगे, परिणाम की पहचान बिना क्या काम होगा,
पहचान बिना वो तो शोक क्रम में चला जाएगा,
हाँ कल्पना कल्पना में चढ़ जाएगा, कल्पित जैन ना आग्रह थी मोक्ष छे
128
एम आत्मा घना वक्त थया मानव भूली गयो छे, मुक्त भाव मा मोक्ष छे एम धारणा मा छे। श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 120 આ વચનામૃતના સ્પષ્ટીકરણ આપશો, પરંતુ તમે પૂછેલું છે
કે મેં પવિત્ર પુરુષોની કૃપા દ્રષ્ટિ આપેલું,
પ્રશ્ન તો એ પૂછો આવેલો છે, કોઈ મુમુક્ષ સુંદર જૈન ધર્મનો આગ્રહ એટલે સંપ્રદાય બુદ્ધિ,
બરાબર,
અને સંપ્રદાય બુદ્ધિ મોક્ષ માર્ગથી પ્રતિકૂળ છે, સંકુચિતતા આ જાય, મોક્ષ માર્ગ વિશાળ હૈ
જી,
એ સંકુચિત બુદ્ધિ હોગી, પછી તે જૈન સંપ્રદાય સંબંધી કેમ ન હોય, કોઈ પણ સંપ્રદાયની બુદ્ધિ, પછી જૈન સંપ્રદાય હોય તો પણ એ સંપ્રદાય બુદ્ધિનો નિશ્ચય છે, જ્ઞાનીઓ એમ કહે છે कि हम न जैन है न हम अजैन है, हम तो आत्मा है, जैन अजैन की बात है ही नहीं, तो संप्रदाय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जैन ये संप्रदाय नहीं, माड़ो नहीं, वस्तु का स्वरूप है वो। तो
ભાઈ શ્રી, જે સામાન્ય જૈન ધર્મની અપેક્ષા રાખીને સાચો માનીને માનતો હોય ત્યારે શું કહેવું? ત્યારે સંપ્રદાય કેવો? એટલે આઈ મીન ડેલિકેટ પોઈન્ટ છે,
સામાન્ય વાળા બધા સંપ્રદાય બુદ્ધિમાં,
સામાન્ય લોકોની વાત છે,
બધા સંપ્રદાય બુદ્ધિમાં હોય જ છે। જીવ જે સંપ્રદાયમાં જન્મ લે એ સંપ્રદાયની સંપ્રદાય બુદ્ધિ એને હોય છે। જ્યાં સુધી યથાર્થ પહેચાન નહીં કરે તબ તક
આગ્રહ રાખે, પણ વર્તન ના હોય, ભાવ ના હોય, જૈન માંથી મુક્ત છે, જૈન થી મુક્ત, પણ કજું કરવું નહીં, ભાવ નથી, ક્રિયા નથી, આગ્રહ થી મુક્ત થવાનો છે।
આગ્રહ એવો છે અમારા સંપ્રદાયમાં તો આમ જ થાય,
આમ જ થાય, મારે
સાચા બીજા ખોટા
તો જો માન્યતા બુદ્ધિ મોક્ષ માર્ગ કે વિરુદ્ધ હોતી હૈ उसे तो कृपालु देव बहुत समय से भूल गए हैं। अर्थात संप्रदाय बुद्धि का विलय तो बहुत शुरू में ही हो गया था कृपालु देव का। राग द्वेष रहित भाव ही मुक्त भाव है, और ऐसे मुक्त भाव में मोक्ष है। यह अनंत ज्ञानियों के ज्ञानियों से अनुभूत किया हुआ परम सत्य है। ऐसा मुक्त भाव कोई भी संप्रदाय में जन्म लेने वाले मनुष्य को हो सकता है, इसमें कोई जैन ज्ञाति का अधिकार नहीं है, कोई भी किसी का भी हो सकता है।
चार वेद पुराण आदि
शास्त्र सुमिथ्यात बना है, पर ज्ञानी ने तो ज्ञान बीजा संप्रदाय में जन्म थवो ते मुक्त भाव नो प्रतिबंधक कारण बनी सकतो नथी। એમ હોત તો ગૌતમ સ્વામીનો મોક્ષ ન થયો હોત। યહ વાત કા પ્રમાણ સ્વયં પરમ પૂજ્ય ગણધરદેવ ગૌતમ સ્વામી હૈ કોઈ લિયા। સંપ્રદાય મેં જન્મ લેના એક બાત હૈ, ઓર સંપ્રદાય કા આગ્રહ હોના, એ દોનો બાત મેં બહોત બડા અંતર હૈ। તથાપિ ઉતના અવશ્ય હૈ, ઇતના હોને કે બાવજૂદ ભી ખાસ બાત વો હૈ, सनातन वितराग मार्ग को छोड़ करके अन्य कोई भी मार्ग का अनुसरण करने वाले को मुक्त भाव उत्पन्न हो जाए ऐसा कभी भी बनता नहीं। क्योंकि अन्यत्र मुक्त भाव के विरुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित है, और ऐसे सिद्धांतों का स्वीकार जिसके श्रद्धा ज्ञान में वर्तता रहे उसे मुक्त मुक्ति के भाव उत्पन्न हो जाए, वो मुक्ति मार्ग से मर्यादा के विपरीत है, मुक्ति मार्ग के मर्यादा में आता नहीं। वो बात साथ साथ समझना है, विशालता भी है और खास उसकी मर्यादा भी है।
એક અનાઉન્સમેન્ટ કરું છું।